الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. تو اس خطبے اور دعاؤں کے ساتھ ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جو کہ حقوق والدین کے اوپر ہے. حقوق الوالدین کیا؟ تو یہ تسہیل بہشتی زیور کتاب کے صفحہ نمبر 313، ٹھیک ہے، 313 کا نمبر ہماری تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. صحیح، تو 313 کا نمبر سن کر کے سب کے ذہن میں کیا چیز آ جانی چاہیے؟ غزوہ بدر. صحیح ہے نا، کیونکہ غزوہ بدر کے اندر مومنین کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی. تو سبحان اللہ، یہ والا ٹاپک جو ہے وہ صفحہ نمبر 313 کے اوپر ہے. تو ہمارے ذہن میں تو سب سے پہلے یہ بات آئی، تو یہی آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا، ویسے مشائخ سے سنا ہے کہ جو آخری وقت ہوگا جب امام مہدی سے وقت کے مشائخ آ کر کے بیعت کریں گے کعبۃ اللہ کے سامنے، تو ان کی بھی تعداد 313 ہی ہوگی. ان کی بھی تعداد 313 ہوگی، اور یعنی اتنے تھوڑے سے تعداد میں لوگ ہوں گے جو کہ حج کے موقع پر امام مہدی سے بیعت کریں گے طواف کرتے ہوئے. یہ اور بات ہے کہ 313 کے پیچھے جو ہے نا، پھر بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہوں گے ان سے، تو یعنی ایک بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، لیکن وہاں صرف 313 لوگ موجود ہوں گے. اچھا، بہرحال یہ تو موضوع سے ہٹ کر کے ایک بات تھی. اب جو ہے وہ موضوع سے متعلق ایک سوال. سب سے پہلے وہ سوال کرنے سے پہلے کبھی کبھی نا ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ طلباء سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا، یہ ہم جو ہے وہ اپنی بچوں کی، بڑے بلکہ بڑے بچے ہیں تھوڑے سے، وہ تو اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں، تھوڑے بڑے ہی بچے ہیں، تو ان کی جو کلاس ہوتی ہے نا، جو پہلے سائنس کلاس ہوتی تھی، اب جو ہے وہ اسپرچویلٹی کلاس بن چکی ہے. تو اس کے اندر ہم پچھلے دنوں یہ والا کام کرتے آ رہے ہیں کہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کلاس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی دل میں یہی آیا کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس کلاس میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا. باتیں تو بعد میں ہوں گی، تو سب سے پہلا سوال کیا ہونا چاہیے اس کلاس کے اندر، یا کیا ہوگا، ہونا چاہیے نہیں کیا ہوگا. اچھا، انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہماری نیت کے حوالے سے دوسروں پہ تنقید کی نگاہ سے یہ درس نہ سنیں. نہیں، میں یہ تو آپ سے پوچھا نہیں ہے کہ پہلی بات کیا ہوگی، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہوگا، یعنی میں آپ سے پہلا سوال کیا کروں گا، یہ سوال ہے. آپ تو جواب دے رہی ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ کیا کریں گے اس کے اندر، نیت سے متعلق بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہاں نیت سے متعلق بات ہوگی یا ہونی چاہیے کم از کم، لیکن ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہو، ہم علم کیوں حاصل کر، اب تک جو سنتے ہیں کیا سیکھا. ماشاءاللہ، یہ بڑا اچھا سوال ہے ویسے. اب تک جو سنتے ہیں تو اس سے آپ نے کیا سیکھا، لیکن یہ والا سوال بہت، یعنی بہت ہی اوپن اینڈڈ سوال ہے، اس کا جواب دیتے دیتے پھر شام ہو جائے گی، تو اس وجہ سے یہ والا سوال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو چلیں مزید وقت اس میں لگائے ہوئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، अच्छा, इन्होंने लिखा है कि हमने ये मौजू क्यों चुना है, ये तो हम आपको पिछली क्लास में बताते आए हैं, इस वजह से हम दोबारा आप, लेकिन ये एक अच्छा सवाल है कि हमने ये मौजू क्यों चुना है। ये भी सही है, ये भी एक अच्छा सवाल है जो कि मुझे, हो सकता है मैं आपसे सवाल कर लेता, ठीक है, कि व्हाई आर वी स्टडीइंग हुकूक ए वालिदैन इन दिस क्लास। एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई शुड हैव आस्क्ड दिस और आई शुड बी आस्किंग दिस। तो ये अच्छा सवाल है, आप सबने पढ़ लिया, हमने ये मौजू क्यों चुना, हम ये व्हाई आर वी स्टडीइंग हुकूक ए वालिदैन इन दिस क्लास, ठीक है। तो इसका जवाब अगर आप में से कोई दे, और जो असल में मैं सवाल करने वाला था वो तो बहुत मुश्किल है कि आप वो सवाल तक पहुंच सकें, ठीक है, तो वो मैं खुद ही बता देता हूं आपको। हमने आखिरी क्लास में क्या पढ़ा था, चलें ये भी हम सवाल करते हैं लोगों से कि हमने आखिरी क्लास में क्या पढ़ा था, या आखिरी बात हम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो जब तक आप लोग इस सवाल का जवाब लिखें कि हम इस क्लास में हुकूक वालिदैन क्यों पढ़ रहे हैं, हमने ये मौजू क्यों चुना है, ठीक है, तो ये आप जवाब दें इसका, और मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने आपसे सबसे पहले कौन सा सवाल करना था। वो सवाल ये करना था कि हुकूक वालिदैन की जब बात होती है तो उसमें कौन सी वाली आयत बयान की जाती है, उस बात को शुरू करने से पहले कौन सी वाली आयत बयान की जाती है, या कौन सी वाली आयत बयान करनी चाहिए, यहां पर वो वाली आयत क्यों नहीं है, राइट, यहां पर वो वाली आयत क्यों नहीं है, और वो आयत है भी ऐसी जो कि हम अपनी क्लास में रिसेंटली पढ़ भी चुके हैं, सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा वल मेराज, राइट, वो हम पढ़ रहे हैं ना पीर की क्लास के अंदर, तो उसी के अंदर हमने ये वाली आयत पढ़ी थी ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़वा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहू, और तुम्हारे रब ने ये हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, व बिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों में से कोई तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, कोई एक या दोनों पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उनको जो है तुम उफ भी ना कहो, वला तनहर हुमा, और उनको झिड़को नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और तुम उन दोनों से जो है वो एक करीम कौल कहो, अच्छी बात करो उनसे, वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ल मिनर रहमा, और उनके सामने अपने कंधों को झुका करके रहमत के साथ जो है वो खड़े रहो, वकुर रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहो अपने रब से कि ऐ मेरे रब उन दोनों के ऊपर रहम फरमाइए जैसे कि उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया था, राइट। तो हुकूक वालिदैन के मुतालिक तो कुरान मजीद के अंदर ये वाली आयत है, राइट, वालिदैन की के साथ जो मामलात होते हैं उनके मुताबिक, तो ये वाली आयत है, यहां पर इस वाली आयत से उन्होंने शुरू नहीं किया, ठीक है ना, यहां पर तो जो आयत है उसमें तो वालिदैन का कोई जिक्र ही कोई नहीं, जिक्र ही कहीं नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आयत है जो अभी हमने आपके सामने तिलावत भी करी थी खुतबे के अंदर, तो उसमें तो फरमाते हैं इन अल्लाह यामुरकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि तुम अमानतों को वहां तक पहुंचा दो जहां वो डिजर्व करती हैं, जहां वो बिलोंग करती हैं, ठीक है ना, यानी अमानतें अमानत वालों को अदा कर दो, अंतु अदो अदा कर दो, ठीक है, उसके अहल, अमानत के अहल लोगों को अमानतें अदा कर दो, वइजा हकमतुम बैन अन्नासी, और जब तुम लोगों के दरमियान कोई फैसला करो, अंतहकुमू बिल अदल, तो उनके दरमियान अदल के साथ इंसाफ के साथ फैसला करो। इसमें किधर है वालदैन का जिक्र, इसमें तो कहीं वालदैन आते ही नहीं है, आते हैं आपके ख्याल में, ये आयत पता है कहाँ पढ़ी जाती है, इस आयत को भी खुतबे में पढ़ा जाता है, कौन से वाले खुतबे में पढ़ा जाता है पता है, हमारे हजरत और हमारे हजरत के हजरत मशाइख उज़्ज़ाम, ठीक है ना, जब किसी को खिलाफत देते हैं ना, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, अपना नायब बनाते हैं, जिसको कहते हैं खिलाफत देना, उस वक्त जो खुतबा पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ये वाली आयत पढ़ते हैं। सुना होगा ना आपने कभी, अगर आप में से किसी ने नक्शबंदी इज्तिमा देखा होगा, या जो है वो एतिकाफ की रिकॉर्डिंग वगैरह, या जो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है उसको सुना होगा, तो उसके अंदर एक खिलाफत मजलिस होती है बिल्कुल आखिर में जा करके, जिसमें हजरत जो है ना वो नए लोगों को खिलाफत दे रहे होते हैं कि भाई अब आप जा करके दीन का काम करें, अब आप जो है वो सिलसिले की मेहनत करें, और आप जो है लोगों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करें। उसमें जो खुतबा पढ़ते हैं ना हजरत, उसमें ये वाली आयत पढ़ते हैं, राइट? और यहाँ पर तो हुकूक वालदैन के अंदर, ठीक है, तो अभी तक तो किसी ने पहले सवाल के जवाब नहीं लिखा, तो मैं दूसरे सवाल करके आपसे पूछूं कि क्यों क्यों ऐसा है यहाँ पर, ठीक है? तो क्यों तो खैर आगे इंशाल्लाह पता चल जाएगा, लेकिन आपने अभी तक पहले सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया कि हमने आखिरी क्लास में क्या पढ़ा था, या हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? चले, मर्जी आपकी, नहीं देना चाह रहा है कोई इस वक्त इसका जवाब, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे फरमाते हैं कि इस आयत से दो हुक्म मालूम हुए, ठीक है? बाय द वे, ये पेजेस जो है वो आपके साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर भी कर लिए थे, वैसे स्क्रीन के ऊपर ये शेयर भी हुए हुए होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं वहां से। तो कहते हैं कि इस आयत से दो हुक्म मालूम हुए, एक ये कि जिन लोगों का हम पर हक वाजिब है उनका हक अदा किया जाए, जिन लोगों का भी हम पर हक वाजिब है उनका हक अदा किया जाए, अन तो अद्दुल अमानात इला अहलिहा, ठीक है? जब आप किसी की अमानत अपने पास रखते हैं ना, तो ये अमानत उसका हक होता है, जब वो मांगेगा तो उस वक्त ये अमानत आप उसको लौटा दें, ये उसका हक है, ठीक है? अमानत रखवाने वाले का हक है कि उसको अमानत लौटाई जाए, जैसे आपने उससे ली थी या जैसे उसने आपके पास रखवाई थी, ठीक है? दूसरे ये कि एक के हक के लिए दूसरे शख्स का हक जाया करना जायज नहीं है, ठीक है? एक शख्स के हक के लिए दूसरे शख्स का हक जाया करना या मारना जायज नहीं है, ठीक है? इनमें से वालिदैन के हुकूक भी हैं, वालिदैन के बाज हुकूक वाजिब हैं और बाज सिर्फ मुस्तहब हैं, बाज हुकूक वाजिब हैं वालिदैन के कुछ, और बाज हुकूक वालिदैन के सिर्फ मुस्तहब हैं। मुस्तहब की क्या तारीफ होती है कि अगर उस काम पर अमल करोगे तो सवाब मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, इसको मुस्तहब कहते हैं। इस्तेहबाबी दर्जे में भी इसको कहा जाता है, इस्तेहबाबी हुक्म है ये, ठीक है? तो कुछ हुकूक वाजिब हैं, वाजिब का मतलब होता है कि अगर नहीं अदा करोगे तो गुनाह मिलेगा, और इस्तेहबाबी का मतलब होता है कि नहीं अदा करोगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है? बीवी और औलाद के भी हुकूक हैं। अब जो है ना वो असल पॉइंट के ऊपर आए, जिस वजह से ये वाली आयत इस मौजू के शुरू में लिखी है कि बीवी और औलाद के भी हुकूक हैं, सिर्फ वालदैन के हुकूक नहीं होते हैं, बीवी और औलाद के भी हुकूक होते हैं। मज़कूरा आयत शरीफा से जो दो उसूल मालूम हुए थे, इन्हीं उसूल की रोशनी में वालदैन और बीवी औलाद के हुकूक की तायीन, और अगर उनके हुकूक की अदायगी में कभी तआरुज आ जाए, यानी हुकूक की तायीन करना, मुतय्यन करना, डिटरमिन करना कि किसके क्या हुकूक हैं, ठीक है? तो इस उसूल की रोशनी में जो इस आयत में बयान किए गए हैं, वालदैन और बीवी औलाद के हुकूक की तायीन, और अगर उनके हुकूक की अदायगी में कभी तआरुज आ जाए, तआरुज का मतलब क्या होता है? हम इंग्लू बोलने वाले, इंग्लू कहते हैं इंग्लिश प्लस उर्दू, ठीक है? क्योंकि हम हैं लॉर्ड मैकॉले के तरबियत याफ्ता, ठीक है? ब्रिटिश जो था ना वो मिनिस्टर जिसने आकर के हमारा तालीमी निज़ाम बनाया था, ठीक है? तो इसी वजह से हम उसी तालीमी निज़ाम के पढ़े लिखे हुए सारे के सारे हैं, तकरीबन सारे के सारे, तो हम उसी के तरबियत याफ्ता कहलाएंगे ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ निज़ाम तालीम उसके तरबियत याफ्ता होते तो फिर हम कहलाते कि हमारे मुरब्बी नबी अलैहिस्सलाम है, लेकिन हमारे तो मुरब्बी नबी अलैहिस्सलाम नहीं है, यानी हमने उनको बनाया नहीं अपना मुरब्बी है, तो वो होना तो चाहिए उन्हीं को, लेकिन हमने तो उनको नहीं बनाया, हमने तो लॉर्ड मैकॉले को बनाया। ठीक है, तो अब हमारी तो फिर लैंग्वेज तो उसके हिसाब से ही होगी ना, तो ना तो हमें पूरी इंग्लिश आती है ना तो हमें पूरी उर्दू आती है, तो इस वजह से हम इंग्लू बोलने वाले हैं, इंग्लिश प्लस उर्दू। ये हमारे एक दोस्त की कॉइन्ड टर्म है ये, इंग्लिश उर्दू। तो तारुस को जो है ना वो क्या कहा जाता है फिर हमारी लैंग्वेज में, क्लैश। ठीक है, जब क्लैश हो जाए दो चीजों के दरमियान, ठीक है, जब टकराव हो जाए दो चीजों के दरमियान, उसको तारुज होना कहते हैं। तो जब वालदेन के और बीवी बच्चों के, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट भी इसको कहते हैं, तो इसमें जब कभी तारुज आ जाए तो तदबीक व तरतीब मालूम की जा सकती है। ठीक है, तदबीक व तरतीब, तदबीक का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान क्लैश लग तो रहा है, लेकिन असल में ये क्लैश नहीं है, बल्कि ये यानी इन दोनों को ना आप आपस में, आप जो है वो एक रब्त है इन दोनों का। ठीक है, आपस में एक रब्त है कि कोई चीज इस तरह से देखी जाएगी, दूसरी चीज दूसरे तरीके से देखी जाएगी। ठीक है ना, दोनों को देखने का जाविया निगाह असल में मुख्तलिफ है, एक ही जाविया निगाह से आप दो चीजों को नहीं देख सकते। ठीक है ना, जब दो चीजों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्लैश हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन बजाहिर आपको नजर आ रही है, तआरुज नजर आ रहा है, तो वो इस वजह से आपको नजर आ रहा है क्योंकि आप एक ही आईने से दोनों चीजों को देख रहे हैं, एक ही एंगल से दोनों चीजों को देख रहे हैं, हालांकि दोनों अलग अलग किस्म की चीजें हैं, दोनों का मकाम मर्तबा अलग है, तो उनको आप अलग तरीकों से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, जब आप दोनों को अलग तरीके से देखेंगे तो फिर तआरुज खत्म हो जाएगा, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, उसका स्टैंडर्ड अलग है, इसका स्टैंडर्ड अलग है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दो औरतें हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर दो औरतें हैं, तो एक औरत जब कोई गलत काम करती है तो आप उसके बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला उसके साथ जो है ना वो उसको उसको माफी का उसके साथ दरगुजर का मामला करे। ठीक है ना, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, और सभी लोग कर लेते हैं इस तरह की चीजें। ठीक है ना, तो एक औरत है, उसके बारे में आपने, जब उसने कोई गलत काम किया तो आपने उसके बारे में ये कहा कि बेचारी, राइट, इसको क्या पता कि सही गलत क्या है, तो इस वजह से इसने ये काम कर लिया गलत, अल्लाह ताला उसको माफ करे। ठीक है ना, और एक दूसरी औरत है, उसने भी ये गलत काम किया। ठीक है, तो अब आप उसके बारे में कह रहे हैं कि इसको ये गलत काम हरगिज नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, इसको ये गलत काम हरगिज नहीं करना चाहिए था, और आप जो है ना उसको समझाना शुरू कर दें, आप उसकी इसलाह करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा कि भाई उस औरत के लिए तो आपने बड़ा नरम ओपिनियन रख लिया, बड़ा फॉरगिविंग किस्म का ओपिनियन रख लिया, बड़ा दरगुजर वाली आपने बातें करनी शुरू कर दी, और इस औरत के लिए जो है वो आप कह रहे हैं कि इसको ये काम हरगिज नहीं करना चाहिए था, इसने बड़ा गलत काम किया, ऐसे करके, और आप उसकी इसलाह करनी शुरू हो जाए। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है ना, ये इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इसको डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मिसाल मिसाल समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना कि एक औरत के साथ आपका ये मामला है, दूसरी औरत के साथ आपका दूसरा मामला है। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बहुत नेक बुजुर्ग ये वाला काम कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, अब आप चाहते हैं कि नेक बुजुर्ग साहब जो है ना वो आप उन लोगों को बदगुमानी से बचाएं, उन बुजुर्ग के बारे में, बुजुर्ग साहब के बारे में लोग बदगुमानी का शिकार ना हो जाए, तो अब आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे कि देखो उन बुजुर्ग साहब ने जो ये काम किया है ना, ये बजाहिर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, लेकिन असल में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप उसको रिजॉल्व करेंगे, या क्या क्या वजह बयान करेंगे लोगों को कि जिससे कि उन बुजुर्ग का ये अमल जो है वो गलत नजर आने की बजाय सही नजर आना शुरू हो जाए, कैसे। इसके लिए आपको, वैसे तो आपसे सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन हम आपसे सवाल नहीं पूछते इस बारे में, बल्कि जवाब भी खुद ही दे देते हैं। आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आप तदबीक करेंगे इसके अंदर, आप इसको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि भाई वो जो बुजुर्ग है ना, जिस औरत के साथ उन्होंने दरगुजर वाला मामला किया, वो औरत कोई एक आम सी औरत थी, कम इल्म औरत थी, उसके साथ उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था, राइट? एक आम औरत थी वो, जबकि जिस औरत के बारे में उनका जो वो जरा सख्त है कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था और उसकी इसलाह की वो कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी बेटी थी, ये औरत कोई आम औरत नहीं थी, ये औरत उनकी बेटी थी, या ये औरत उनकी बीवी थी, ये औरत उनके घर की कोई औरत थी, ठीक है ना? तो देखने का जाविया मुख्तलिफ है, एक बाहर की मोहल्ले की औरत के लिए देखने का जाविया मुख्तलिफ होना चाहिए और अपने घर की औरत को देखने का जाविया मुख्तलिफ होना चाहिए। इसको डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कहेंगे, इसको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कहेंगे। आपको ये बात शायद ना समझ में आ रही हो, ना हजम हो रही हो, तो हम आपको इसके लिए दूसरी मिसाल दे देते हैं, गली का बच्चा और अपना बच्चा, राइट? अपना बच्चा और गली का बच्चा, गली में रहने वाला कोई दूसरा बच्चा, राइट? अपना बच्चा जब गलत काम करता है तो आप उसको उसकी इसलाह की फिक्र करते हैं और आप उसके ऊपर थोड़ा नाराज भी होते हैं। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ही जो है वो मारना पीटना शुरू नहीं कर देते, लेकिन उसके इस गलत काम को एक आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो आपका बच्चा है और वो आप उसको बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते। वो आज उसने ये गलत काम किया है, कल वो दोबारा से ये वाला गलत काम करेगा, या हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरा गलत काम करे, ठीक है ना? तो आप उससे नाराज भी होते हैं, आप उसकी इसलाह की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गली में किसी मोहल्ले का दूसरा कोई बच्चा वो ही वाला काम करे तो आप कहते हैं हाँ बस ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे तो इस तरह का काम कर देते हैं, बस ठीक है, बस सही है, तो मैं क्या करूं अब इसका, गली के बच्चे ने काम किया तो मैं क्या करूं, हर गली के बच्चे की मैं इसलाह करूं बैठ करके, मैं कैसे इसलाह कर सकती हूँ? हालांकि दोनों बच्चे हैं ना, आपका बच्चा भी एक बच्चा ही है, एक इंसान वो भी है और गली का बच्चा भी एक बच्चा ही है, लेकिन देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है ना लोगों के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना वो तदबीक की जाती है, अंग्रेजी में इसको जो है वो कोरिलेट करने का भी आप लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप को आप क्लियर करें कि भाई ये दो ये अलग अलग चीजें हैं, इनका ताल्लुक आपस में नहीं है, या है या जो भी है, तो तदबीक के जरिए से फिर कॉन्ट्रडिक्शन रिजोल्व की जाती है। और दूसरा तरीका कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने का, क्लैश को या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का क्या होता है, तरजीह देना कि भाई उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इसकी इम्पोर्टेंस कम है, इसका जो है ना वो प्रेफरेंस ज्यादा है, इसकी प्रेफरेंस कम है, ठीक है ना? तो जो हाईली प्रेफर्ड चीज होती है वो आप पहले करते हैं और जो उससे कम प्रेफरेबल चीज होती है, प्रेफरेबल चीज होती है उसको आप उसके बाद करते हैं। तो जब कोई चीज आपने इस तरह से रिजॉल्व कर ली कि भाई पहले मैं ये काम करूंगा उसके बाद मैं ये काम करूंगा, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, अब ये आपस में क्लैश नहीं करेंगी, हर कोई हर चीज जो है वो अपने अपने वक्त पर हो जाया करेगी, ठीक है? तो हुकूक के मामले में भी यही होता है, ये हुकूक जब आपस में क्लैश करना शुरू कर देते हैं ना कि बीवी को का हक करना है, कि बेटे का हक करना है अदा करना है, कि माँ बाप का हक अदा करना है, तो भाई एक तो तरीका होता है रिजॉल्व करने का कि आप दूसरी नजर से देखें कि भाई ये माँ है, ये बीवी है, ये दोनों एक, अगरचे के दोनों औरतें हैं, अगरचे के दोनों की जो बायोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, वो दोनों सेम है, लेकिन मकाम और मर्तबा दोनों का अलग अलग है, उसका अलग रोल है, उसका अलग हक है मेरे ऊपर, इसका अलग हक है मेरे ऊपर, ठीक है ना? और उसी तरीके से तरतीब के जरिए से भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं, ठीक है? तो ये दो चीजें जो है ना वो हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है? ये दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हमारे ऊपर हुकूक आते हैं तो उन हुकूक में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी क्लैश होता है, तो हमें उनकी उनके दरमियान तदबीक करनी है या हमें उनके दरमियान तरतीब देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? जब आप ये दो या दो में से कोई एक जो भी मुनासिब बनता है उस वक्त के हिसाब से कर लेते हैं ना, सारा कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है? क्योंकि क्यों कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों के हक जो है वो आपस में क्लैश करना शुरू हो जाए? उसकी वजह यह है कि ये हुकूक जो है ना ये किसने लगाए हैं, ये किसने असाइन किए हैं, ये हुकूक जो है वो परवरदिगार ने दिए हैं, ये हुकूक किसने असाइन किए हैं कि माँ का हक क्या होता है, बाप का हक क्या होता है, बेटे का हक क्या होता है, बेटी का हक क्या होता है, बहन का हक क्या होता है, ये इंसानों ने नहीं सेट किए हैं, ये किसी दुनियावी पार्लियामेंट ने या किसी दुनियावी असेंबली ने या किसी जिरगे ने ये सेट नहीं किया, ये हुकूक कि उनसे गलती हो सकती है, इंसानों से गलती हो सकती है। नहीं, ये इंसानों के सेट किए हुए उसूल के हुकूक हैं ही नहीं, ये तो अल्लाह के दिए हुए हुकूक है ना। और अल्लाह कौन है? राइट, वो हुआ सुबहान हुआ ताला, वो हुआ सुबहान हुआ ताला, वो सबसे बुलंद भी हैं और वो सुबहान यानी वो गलती नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत गलती नहीं करता कि किसी का हक जो है ना वो किसी दूसरे को दे दिया, या दो हुकूक जो है ना वो दो मुख्तलिफ रोल्स के लिए दोनों सेम हुकूक कर दिए। अब जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन हुई भी है, सर पकड़ के बैठे हुए, अब क्या करें भाई। नहीं, अल्लाह ताला ने अलग अलग हुकूक दिए हैं और ऐसे हुकूक बनाए हैं कि जिनको के हम अदा भी कर सकें। ऐसे हुकूक नहीं बनाए अल्लाह ताला ने किसी के लिए कि जिनको के हम अदा ना कर सकें, ठीक है ना। तो इस वजह से ये बिल्कुल पक्का ईमान रखें कि अल्लाह के दिए हुए हुकूक में ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है। ये हमारी अपनी कम इल्मी की वजह से हम इस कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो भाई उसके लिए इल्म हासिल करें, ठीक है। पिछली क्लास में भी बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बात हुई थी ना कि भाई इल्म हासिल किए बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो इल्म हासिल करेंगे तो फिर हो सकता है उसके बाद फिर, ठीक है। अहले हुकूक की अदायगी में तरतीब की रियायत जरूरी है, वरना बसा औकात वालिदैन के हुकूक की अदायगी में कोताही होती है, ठीक है ना। बसा औकात, हमेशा नहीं, बसा औकात का मतलब होता है अक्सर औकात, ठीक है ना। वालिदैन के हुकूक की अदायगी में कोताही होती है, उनके हुकूक जाया कर दिए जाते हैं यानी उनके हुकूक अदा नहीं किए जा रहे होते हैं, और बसा औकात वालदेन की हुकूक की अदायगी में बीवी और औलाद की हक तलफी होती है, बीवी और औलाद की हक तलफी हो जाती है, ठीक। कि वालदेन के हुकूक जो नहीं थे उनको समझ करके अदा कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है ना वो बीवी के हुकूक अदा नहीं हो रहे, या जो है वो औलाद के हुकूक अदा नहीं हो रहे, ठीक है। हालांकि दोनों बातों से कुरान मजीद ने मना किया है, अल्लाह ताला ने मना किया है। और बसा औकात किसी का हक जाया तो नहीं होता, यानी ऐसा भी होता है कि किसी का हक जाया तो हम नहीं कर रहे होते, लेकिन ना वाकफियत की वजह से, ना वाकफियत का मतलब क्या होता है, कम इल्मी या ला इल्मी, इसी को ना वाकफियत कहते हैं। बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट किस्म का ये वर्ड है ना वाकफियत, बड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन हकीकत इसकी क्या है, ला इल्मी, ठीक है ना। और थोड़ा सा और जरा आप क्रूड तरीके से अगर इसको ट्रांसलेट करें तो जहालत, ठीक है। हजरत ने यहाँ पे जो लिखा तो ये तो बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ताकि बुरा ना लगे किसी को। तो ना वाकफियत की वजह से बाज लोग गैर वाजिब हुकूक को भी अपने जिम्मे वाजिब समझते हैं, राइट। गैर वाजिब हुकूक जो कि वाजिब नहीं थे उनको वाजिब समझना शुरू कर देते हैं और उनकी अदायगी को अपना फर्ज समझते हैं, राइट, हालांकि वो फर्ज नहीं थे, ठीक है। और फिर कभी ऐसा होता है कि उन्हें अदा नहीं कर सकते तो खामखा वसवसे में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपने गलत फहमी की वजह से किसी चीज को फर्ज समझ लिया, या शैतान ने आपको समझा दिया कि ये फर्ज है, ठीक है ना, हालांकि वो फर्ज नहीं था, ठीक है। शैतान भी तो फारिग तो नहीं बैठा हुआ ना, वो बैठक बैठ करके पुलाव और बिरयानी और कबाब पराठे खाने के लिए तो इस दुनिया में आया नहीं है ना, ठीक है ना। कि अभी तो मैं सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ, अभी तो मैं गटागट जो है ना वो अपनी लस्सी पीऊंगा, फिर चाय पीऊंगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं बनी आदम को बहकाने के लिए जाऊंगा। तो जब तक शैतान जो है वो कबाब पराठे का नाश्ता कर रहा है, उस वक्त तक बनी आदम जो है ना वो माशाल्लाह नेकियां कर रही है। ऐसा तो नहीं होता ना, ये होता है ऐसा, शैतान नहीं करता बिरयानी पुलाव और निहारियां जो है ना, ये शैतान नहीं खाता। शैतान क्या खाता है, जो हड्डियां होती है ना पड़ी हुई, ठीक है ना, जानवरों की हड्डियां, वो खा लेता है बस, ठीक है। और वो खाता भी ऐसा है कि हड्डी खत्म भी नहीं हो रही होती, वो पड़ी रहती है लेकिन उसका पेट भर जाता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा दुश्मन शैतान, ठीक है, वो अपने काम से मुस्तकिल लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, जो चीज फर्ज नहीं थी उसको फर्ज बना करके हमारे सामने पेश करता है, और जो चीज फर्ज थी उसको गैर फर्ज बना करके पेश करता है कि नहीं नहीं ये कोई फर्ज नहीं है। जैसे पर्दा है, खवातीन की क्लास है तो फिर पर्दे की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, कि नहीं नहीं ये तो कोई नहीं होता भाई, ये तो मौलवियों की बनाई हुई चीज है, अल्लाह ने कोई थोड़ी फर्ज किया था पर्दा, ठीक है ना। या अगर कोई कहे कि नहीं नहीं पर्दा तो फर्ज है, तो फिर क्या कहता है कि नहीं ये तो आंखों का पर्दा होता है, राइट, या तो दिल का पर्दा होता है या आंखों का पर्दा होता है और पता नहीं क्या क्या और जिस किस्म के पर्दे होते हैं, लेकिन वो पर्दा कोई पर्दा नहीं होता जो कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्महातुल मोमिनीन ने किया, यानी जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन ने किया या जो है वो सहाबियात ने किया, वो पर्दा कोई थोड़ी होता है, ठीक है। तो शैतान दोनों तरीके से इंसान का नुकसान करता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है इसकी वजह से कि जो हुकूक वाजिब नहीं थे उनको अपने जिम्मे वाजिब समझते हैं और उनकी अदायगी को अपना फर्ज समझते हैं, और फिर कभी ऐसा होता है कि जब उन्हें अदा नहीं कर सकते तो फिर वसवसों में मुब्तला हो जाते हैं कि शरीयत के अहकाम में बिला वजह तंगी होती है, ठीक है ना। अब फर्ज तो आपने बनाया ना इसको, हालांकि वो फर्ज तो नहीं था, ठीक है ना। इसकी मिसाल अभी रिसेंटली हमने क्या पढ़ी है बताएं जरा, ये तो सवाल आपका आपसे पूछे बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, कि अभी रिसेंटली हमने ये क्या चीज पढ़ी है कि जो चीज फर्ज नहीं होती है उसको हम फर्ज समझते हैं, ठीक है, और फिर जब हम उसको अदा नहीं कर पा रहे होते हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि शरीयत में बड़ी तंगी है, ठीक है। तो इसकी मिसाल बताएं या इसकी क्या सूरत कहलाती है। नहीं, हमने जो पढ़ी है तहज्जुद तो हम, हाँ तहज्जुद तो हम पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर सूरह बनी इसराइल की तफसीर के अंदर जी, बिदत इस वाली क्लास के अंदर तो हम बिदतों और रसूमात के बारे में पढ़ रहे थे ना, शादी ब्याह की रसूमात, राइट। तो ये रसूमात फर्ज तो नहीं थी, आपने इनको फर्ज बना दिया, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, शादी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो अब जो है वो जिसने रसूमात करनी है और कर सकता है वो तो करेगा, लेकिन हर बंदा जो है वो रसूमात नहीं कर सकता, तो अब वो समझेगा कि यार ये तो बड़ी मुसीबत है, मैं तो ये नहीं कर सकता, अब मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उसी तरीके से बिदत है कि भाई वो पता नहीं कौन सा 11वीं का दूध देना है और जो है वो फलाना ढिबकारा उल्टी सीधी चीजें करनी है, तो अब ये तो शरीयत का हिस्सा नहीं थी, अब कोई उसको करवाएगा और वो कर नहीं सकता तो कहेगा यार ये तो बड़ी तंगी है इसके अंदर, दीन के अंदर तो बड़ी तंगी है, हालांकि दीन में तो तंगी नहीं थी, आपने बनाई है तंगी खुद से, ठीक है। तो अब जो है ना वो शैतान पहले तो गलत फहमी क्रिएट करता है, फिर उसके बाद उसी गलत फहमी के ऊपर कैपिटलाइज करके दिल में शरीयत के और दीन के खिलाफ जज्बात पैदा करता है, ठीक है ना। इससे उनके दीन को नुकसान पहुंचता है, यानी अब जो है ना वो दीन के बारे में बदगुमान हो जाते हैं। इसलिए हुकूक वाजिबा और गैर वाजिबा में फर्क जरूरी है, ठीक है, ताकि ना किसी की हक तलफी हो और ना ही ख्वामखा अपने ऊपर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ डालने की नौबत आए, ना किसी की हक तलफी हो और ना ही अपने ऊपर जो है वो बोझ समझना शुरू कर दें, ठीक है, जो कि बोझ नहीं था, ठीक है। देखें कितनी प्यारी बात, कितनी जबरदस्त बात, कोई इसे इख्तलाफ कर सकता है आप में से, ठीक है, और ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और ये इन्होंने क्यों, वही बात है कि हम ये मौजू पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम मौजू पढ़ रहे थे शादी ब्याह के रसूमात वगैरह, तो उसका इख्तिताम इसी टॉपिक पर हुआ था कि माँ बाप जो है वो अपने औलाद की शादी वक्त पर नहीं कर रहे होते हैं, तो पूरी बात हुई थी पिछली क्लास के अंदर कि इतने मुखलिस होते हैं, इतने मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन क्यों अपनी औलाद के साथ जो है वो इज़ाती करना शुरू कर देते हैं कि उनकी वक्त पे शादी नहीं कर रहे होते, जहालत की वजह से, राइट, ना वाकिफियत की वजह से, कम इल्मी की वजह से या गलत इल्मी की वजह से, ठीक है ना। तो वो इतनी मोहब्बत भी उनको काम नहीं आती, उनके औलाद के काम नहीं आती, बल्कि नुकसान का सबब बन जाती है। तो अब जो है ना वो यहाँ पर फिर वालिदैन के हुकूक और वालिदैन के साथ साथ दूसरे जो औलाद के और बीवियों के हुकूक हैं, तो उनके ऊपर फिर हजरत ने या जिसने भी इसको कंपाइल किया है तो उन्होंने फिर इस टॉपिक के ऊपर जो बात करी है, तो हमने हमारे दिल में बात आई कि अच्छा दिल में क्या बात आई, मुझे तो पता भी नहीं है इस किताब के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, इतनी मोटी किताब है और इतना कुछ दूसरे काम करने को होते हैं कि हमने तो ये किताब पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने खुलवा दी एक दिन, यही सफ़ा जो है वो खुल गया जबकि हम वो रसूमात वगैरह की तैयारी कर रहे, रसूमात वाले टॉपिक की तैयारी कर रहे थे। तो जब खुल गया, हमने दो चार लाइनें पढ़ ली, तो दिल में ख्याल भी किधर से आता है, दिल में ख्याल भी किधर से आता है, या तो शैतान ने ख्याल डाला होगा भाई, या रहमान के फरिश्ते ने ख्याल डाला होगा, दोनों में से किसी एक ने डाला होगा। अब आप फैसला कर लें कि ये वाला ख्याल जो है ना कि हमने हुकूक वालदैन पढ़ना है, ये शैतान की तरफ से आया होगा ये, या फरिश्ते की तरफ से आया होगा। हमारा गुमान तो ये है कि फरिश्ते की तरफ से आया होगा, ठीक है। और यानी इस वजह से फिर हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी ये तरतीब बनी थी, ये वजह बनी थी इस टॉपिक को सेलेक्ट करने की हमारी तरफ से। और दूसरा ये कि इन्होंने इस टॉपिक को इस तरीके से क्यों डिस्कस किया है यहाँ पे। हालांकि हुकूक वालिदैन की जब टॉपिक आता है तो फिर उसके अंदर तो वही वाली बात होती है कि आप कुरान मजीद में है कि उनको उफ भी ना कहो, और उनके सामने जो है वो कंधे झुका करके खड़े रहो, और उनके साथ जो है वो कौलन करीमा कहो, और जो है वो उनके लिए जो है अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सारी बातें क्यों नहीं है, उस आयत से क्यों नहीं शुरू किया, क्यों, इसकी वजह भी जल्दी से बता दें, फिर हम क्लास आज की खत्म करते हैं और बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इन्होंने इस किताब के अंदर वो वाली बातें क्यों नहीं शुरू में शुरू करें, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ वालिदैन के हुकूक में हमेशा वही वाली बातें की जाती हैं, यहाँ वो वाली बातें क्यों नहीं है, या हैं भी तो बाद में, अभी शुरू में नहीं है, उसकी वजह क्या है, जल्दी से बता दें, फिर आपकी जान छोड़ेंगे इस क्लास की हद तक कम से कम। जी जी क्योंकि हुकूक में लोग अदल और तवाजुन नहीं करते, इसलिए हुकूक में लोग अदल व तवाजुन नहीं करते इसलिए। जी ठीक है, ये जवाब भी सही ही है। देखें तो उसकी वजह यह है, पहले इल्म हासिल करने के बाद हुकूक का मालूम होना चाहिए, इस तनाजुर में तो ये टॉपिक मर्दों की क्लास में भी होना चाहिए। जी तो मर्दों की क्लास में भी होता है, और ये टॉपिक इंशाल्लाह, यानी यहाँ पर भी हमने ये टॉपिक जो है ना वो पिछला टॉपिक मुकम्मल होने के बाद शुरू किया है ना, हालांकि बहुत दिनों से ये चीज़ जहन में थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन किताब सामने आई उसी दिन पढ़ना शुरू कर दिया, इंतज़ार किया ना पिछला टॉपिक ख़त्म हो फिर उसके बाद ये शुरू करें। तो मर्दों में भी एक तरतीब से ही इंशाल्लाह ये टॉपिक आपने अच्छी निशानदेही करी, वैसे तो बातें होती रहती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह ये टॉपिक मर्दों में भी पढ़ना शुरू करेंगे किसी ना किसी मौके के ऊपर, क्योंकि लोगों को अच्छे से पता है वो हमारे डिफरेंट करने क्या, हमें डिफरेंट करना आ जाए, हमें डिफरेंट करना आ जाए। देखें उसकी वजह यह है, दो वजूहात हैं और दोनों वजूहात बेसिकली एक ही वजह बनती हैं, ठीक है ना। एक वजह उसकी क्या है कि बहुत ज्यादा जहालत है, इल्म जो है ना मुसलमानों में, हुकूक का इल्म वो तकरीबन खत्म है, खत्म है बिल्कुल, ठीक है ना, नॉन एग्जिस्टेंट बन चुका है, ठीक है ना, हुकूक का इल्म। और दीन है ही सारा का सारा हुकूक, दीन है ही सारा का सारा हुकूक, अल्लाह का हक क्या है भाई, यहां से बात शुरू होती है और जो है ना वो चलती रहती है, अल्लाह का हक, नबी अलैहिस्सलाम का हक, वालिदैन का हक, बीवी का हक, औलाद का हक, शौहर का हक, पड़ोसी का हक, राइट, अपने साथ काम करने वाले का हक, ठीक है ना, बाकी उम्मत का हक, यानी हक ही हक, सारा का सारा तो दीन ये है, हुकूक, ठीक है ना। और जब दीन का इल्म खत्म होता तो इसका मतलब क्या है, हुकूक का इल्म खत्म हो गया, ठीक है ना। तो जहालत जो है ना वो इस वक्त सबसे, अब सबसे ज्यादा फैली हुई हालत में इस वक्त, ठीक है। तो जब ही तो आपके दूसरी क्लास जो है वो औरत के ऊपर क्या हुकूक आते हैं वो क्लास शुरू करवाई, ठीक है ना, तो जहालत की वजह से, इल्म के ना होने की वजह से, ठीक है ना। तो ये एक वजह है कि जिसकी वजह से इन लोगों ने ये टॉपिक यहाँ पे रखा है, क्योंकि उलमा को पता चलता है ना, उलमा लोगों के साथ डील करते हैं, लोग या तो उनसे सवाल करते हैं आकर के, तो पता चलता है कि कितनी जहालत है, उलमा को पता चलता है कितनी जहालत है, ठीक है ना। किताब में नहीं लिखा होता ये बात, ठीक है, कि आजकल कितनी ज्यादा जहालत फैली हुई है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ होता, ये उस वक्त उलमा को पता चलता है जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तब पता चलता है लोगों में कितनी जहालत है, ठीक है। और दूसरी क्या वजह है कि यानी इस वजह से उलमा ने जो है वो ये वाला टॉपिक यहाँ पे इस अंदाज में लिखा है, हुकूक वालदैन को इस अंदाज में इस वजह से लिखा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि लोगों को हुकूक का शऊर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो शऊर देने की जरूरत है, सही। अच्छा दूसरी वजह क्या है वो भी बता देते हैं, लेकिन एक मैसेज किसी ने लिखा हुआ है कि अपने हुकूक याद बहुत रहते हैं और दूसरों पर हमारे हुकूक याद नहीं रहते। अपने हुकूक याद रहते हैं, दूसरों पर हमारे हुकूक याद नहीं रहते, ठीक है, ये सब ठीक है, ये हुकूक के ना होने की वजह से यानी इल्म के ना होने की वजह से ये चीज़ होती है। अच्छा दूसरी वजह यह है कि वालिदैन का जो मामला होता है ना, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बहुत सेंसिटिव मामला होता है। क्यों? इसलिए कि वालिदैन ने पाला पोसा होता है, वो इस दुनिया में आने का सबब बनते हैं, ठीक है, और बच्चा जब दुनिया में आता है उसको यानी दुनिया में बल्कि आने से पहले ही एक्चुअली दुनिया में ही होता है ना, जब माँ के पेट में होता है तो भी तो दुनिया के अंदर ही होता है ना, वहीं से उसको किसकी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, माँ की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी वो उसने यानी दिन की रोशनी देखी भी नहीं है, माँ की आवाजें उसको आ रही हैं, ठीक है ना, और जब वो बाहर आता है दुनिया के अंदर आता है तो फिर उसको माँ माँ माँ, और जाहिर है बाप भी अगर साथ मौजूद है तो फिर बाप की बातें सुनता है, बाप के चेहरे को सबसे पहले देखता है माँ के चेहरे के बाद, ठीक है, और फिर वहीं से उसकी सारी जो है वो जरूरियात पूरी हो रही होती हैं, उसको खाना खिलाया जा रहा होता है, उसके जो है वो प्यार मोहब्बत का मामला उसके साथ हो रहा होता है। तो वालिदैन के साथ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंसान की अटैचमेंट बन जाती है, बहुत ज्यादा यानी गहरा ताल्लुक बन जाता है, ठीक है। तो अब जो है ना ये वालिदैन के मामले को मिस यूज करना, इंसान के खिलाफ इसको मिस यूज करना, इसको इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि शैतान का काम है गुमराह करना। अब वो गुमराह करने के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल करेगा, जो भी उसके हाथ लगेगा, जो भी उससे बन पड़ेगा उसने वो काम करना है। तो सबसे आसान चीजें जिनके अंदर वो इंसान को जो है वो खराब कर सकता है वो यानी उनमें से एक जो है ना वालिदैन का ताल्लुक है, क्योंकि वालिदैन के साथ जज्बाती लगाव पहले से मौजूद है, राइट, जज्बाती लगाव पहले से, और बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक होता है ना वालिदैन के साथ, ठीक है, उमूमी तौर पर। जाहिर है इसके अंदर एक्सेप्शन भी बहुत सारी होती हैं, आजकल तो ज्यादा ही हो गई हैं, लेकिन आमतौर पर वालिदैन के साथ सबसे गहरा जज्बाती ताल्लुक होता है। तो इस वजह से जो है ना वो वालिदैन के हुकूक के नाम पर वो दूसरों के हुकूक मरवाना, दूसरों को हुकूक जाया करवाना शैतान के लिए बहुत आसान होता है। क्या ऐसा नहीं है, इसकी कोई मिसाल दें, जो बहुएं हैं उनको तो पहले से बात अच्छी तरीके से पता है, इस क्लास के अंदर जितनी बहुएं हैं उनको तो ये बात पता है ना, इल्ला माशाल्लाह कोई होगी जिसकी सास उसके साथ अच्छी होंगी, तो हर बहू को ये बात पता है ना तकरीबन, ठीक है, कि मेरी सास जो है ना वो अपने माँ होने की पोजीशन को जो है ना वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और मेरे हुकूक जो है वो जाया करवाती हैं, ठीक है ना, ये बात तो सबको पहले से पता होगी, लेकिन क्या खाली बहू के हुकूक खराब होते हैं माँ के हुकूक की वजह से, बल्कि बहू से ज्यादा किसके हुकूक खराब होते हैं, माँ के हक और बाप के हक की वजह से किसका हक जाया करते हैं, सिर्फ बहू का या किसका, बच्चों का, जी अल्लाह का, अल्लाह ताला का हक, ठीक है ना, अल्लाह के रसूल का हक। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दीन की दावत शुरू करी, लोगों को शिर्क से रोकना शुरू किया मक्का मुकर्रमा के अंदर, जब नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों की खैर ख्वाही, उनको जहन्नुम की आग से बचाने की मेहनत शुरू करी, तो उनके रास्ते में कौन रुकावट बने थे, कौन रुकावट बने थे, नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में कौन रुकावट बने थे? जी, उनके अपने, तो अपने तो फिर टॉपिक से रिलेटेड तो आपका जवाब ना हुआ ना, ठीक है ना? नबी अलैहिस्सलाम की रास्ते में कौन रुकावट बने थे? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन मुसलमान होना चाहते हैं, ठीक है ना? तलहा रजी अल्लाह ताला अन मुसलमान होना चाहते हैं और हो भी गए मुसलमान, और भी कितने सारे जो मुसलमान होने वाले लोग थे, अक्सरियत किन की थी? नबी अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर जो ईमान लेकर के आए थे, नौजवानों की या जवानों की? कौन उनको रोकता था कि मत ईमान लेकर के आओ, मत इसकी बात मानो? कौन रोकता था उनको? कौन उनको जो है वो तकलीफें देता था, मारता था, अजियतें देता था, ठीक है ना? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तो वालदैन वहां पर थे ही नहीं ना मक्का मुकरमा के अंदर, क्योंकि वो तो गुलाम बना करके अफ्रीका से लेकर के आए आए गए थे, राइट? लेकिन बाकी तो वालदैन वहीं पर थे ना मक्का मुकरमा के अंदर, राइट? वहीं पर रहते थे ना सबके वालदैन, तो कौन रोकता था इन लोगों को? और फिर कौन जो है वो किसी को धुएं का अजाब दे रहे हैं, किसी को जो है वो चारपाई वो चटाई में लपेट करके जो है वो मार रहे हैं, किसी को ऐसे कर रहे हैं, किसी को घर से निकाल दिया, किसी को? कौन था नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावट? वालिदैन, राइट? वालिदैन, इंसानों में से वालिदैन। बाकी तो जिन थे ना, शैतान, वो तो जिन है ना, इंसान तो नहीं है ना, ठीक है? तो जिन्होंने वालदैन की बात मान ली वो ईमान से महरूम रह गए, और जिन्होंने वालदैन की बात नहीं मानी वो पिटते रहे, राइट? वो पिटते रहे। तो वालदैन को शैतान ने किस काम के लिए इस्तेमाल किया? नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के हक को मारने के लिए, जाया करने के लिए वालदैन को इस्तेमाल किया शैतान ने, ठीक है ना? और वो कहते भी यही थे कि हम अपने बाप दादा क्या होते हैं, वालदैन नहीं होते क्या? हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ करके तुम्हारे दीन के ऊपर कैसे आ जाएं? हम अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ करके तुम्हारे दीन के ऊपर कैसे आ जाएं? तुम्हारी बात कैसे मान लें, राइट? तो वालदैन का जो जज्बाती ताल्लुक होता है ना, ठीक है ना? अब एक होता है बच्चों को वालदैन के साथ जज्बाती ताल्लुक, जिसकी वजह से वो वालदैन की बात मानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते। और एक होता है वालदैन को बच्चों के साथ जज्बाती ताल्लुक, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस बात को कि उनके बच्चे उनको छोड़ करके किसी दूसरे की बात मानना शुरू कर दें, राइट? माँ बाप को जो अपनी औलाद के साथ जज्बाती ताल्लुक होता है, इसकी वजह से माँ बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि वो उनको छोड़ करके किसी दूसरे की बात बात मानना शुरू कर दें, जैसे अल्लाह, राइट? जैसे अल्लाह का रसूल, जैसे के आलिम दीन, जैसे के मुफ्ती, जैसे के शेख साहब, जैसे के पीर साहब। भाई ये सब गैर है ना, ये वालदैन तो नहीं है बच्चे के। अब बच्चा कहे कि नहीं अब्बू, मैं आपकी बात ही मानूंगा, मैं तो शेख साहब की बात मानूंगा, मैं तो पीर साहब की बात मानूंगा, मैं तो अल्लाह के रसूल की बात मानूंगा। अब्बू कहेंगे ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम वो मानोगे जो मैं कहूंगा तुम्हें मानने के लिए, राइट? जो मैं कहता हूं वो तुम मानोगे, जो मैं तुमसे तुम्हें मना करता हूं वो तुम मान के दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी ठुकाई करूंगा उसके बाद, ठीक है ना? क्या गलत कह रहा हूं? ऐसा नहीं होता, आप गलत कह रहे हैं, आप खलीफा जो है वो हमें अपने वालदैन के खिलाफ उकसा रहे हैं। नहीं, मैं आपको आपके वालदैन के खिलाफ नहीं उकसा रहा, ये दीन ही है, यही दीन है और यही अल्लाह है जिसने इवन ऐसे वालदैन के साथ भी उसने सुलूक का हुक्म दिया है औलाद, इवन ऐसे वालदैन जो कि अल्लाह के खिलाफ अपनी औलाद को चलाते हैं, अल्लाह के रसूल के रास्ते में रुकावट बनते हैं, मशायख से जो है वो दुश्मनी पैदा करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इस दीन ने इन वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है और इनके हुकूक अपनी जगह पे रखे हैं कि नहीं, इनके साथ जो है ना, ये जो है ना कुल लहुमा कौलन कौलन करीमा, ये सिर्फ मुसलमान वालिदैन के लिए नहीं है, ये काफिर वालिदैन के लिए भी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे वालदैन के खिलाफ कोई आपको नहीं उकसा रहा, आप बस इल्म हासिल करें, आप सीखें इन बातों को, और आप अपने जज्बात को जो है वो काबू करें ना, उधर जो है वो जज्बात में डोल करके वालदैन को मारना पीटना शुरू करते हैं, और ना जो है वो वालदैन की तरफ डोल करके जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना शुरू कर दें। ठीक है, इसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा और इसके लिए अपने जज्बात पे काबू करना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपनी इस्लाह की मेहनत करनी होगी, फिर जो है वो सारी चीजें आप बिल्कुल ठीक ठीक कर रहे होंगे। ठीक है, कसूर हमारा अपना है, कसूर ना तो दीन का है और ना दीन वालों का कोई कसूर है। ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अदा फरमाए। यहाँ पर हम ये वाली क्लास रोकते हैं और चंद मिनटों के ब्रेक के बाद हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं।